mercy, Savior. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Shuddhatmane Namah. Namo Arihantanam. Namo Siddhanam. Namo Ayariyanam. Namo Vajjayanam. Namo Loe Savasahunam. Jayaidhavalangate. Nauriyasayalabhuvanabhavanagano. Kevalanana Sariro. अनंजनो नामो चंदो। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित जयधवला टीका है, जो कषाय पाहुड़ तथा चूर्णी सूत्र पर लिखी हुई है। कषाय पाहुड़ के कर्ता है गुणधर भट्टारक और चूर्णी सूत्र के कर्ता है यति ऋषभ आचार्य। और जो मूल में हमें उपदेश प्राप्त हुआ है वो भगवान महावीर के द्वारा प्राप्त हुआ है। यहाँ पहली पुस्तक में जो प्रथम अधिकार है, पेज 272 नाम का, उसकी चर्चा करते हुए अभी हम पृष्ठ संख्या 10 पर आ गए। 10 देखो, 9 पृष्ठ पर हमने कल क्या पढ़ा था देखते हैं। एक उत्पत्ति, पहले सूत्र में कहा था ये उत्पत्ति कहाँ से हुई है। कषाय प्रावृत जो ग्रंथ लिखा है उसकी उत्पत्ति कहाँ से, तो मूल भगवान का जो उपदेश सुनकर गणधर्व ने ये 12 अंगों की रचना की थी, उसमें 12वें अंग में जो 14 पूर्व है उसमें से 5वां जो पूर्व है उसका नाम है ज्ञान प्रवाद। तो ज्ञान प्रवाद ये 5वां पूर्व है और प्रत्येक पूर्व में विशिष्ट नंबर ऑफ वस्तु होती है, तो इसमें तो 12 वस्तु है, तो उसमें से 10वीं वस्तु और उसमें तीसरे नंबर का प्रावृत जिसका नाम है पेज्य प्रावृत, उस प्रावृत से यहाँ कषाय प्रावृत की उत्पत्ति हुई है। ये तो हमने कल पढ़ा था। अभी 10 नंबर के पृष्ठ पर आते हैं, वहां शंका। एक ही पदार्थ में उत्पाद्य उत्पादक भाव कैसे बन सकता है। पृष्ठ संख्या 10, वो प्रस्तावना के बाद वाले पृष्ठ लेना, अर्थात पेज और कषाय जब एक ही है तो फिर पेज प्रावृत से कषाय प्रावृत उत्पन्न हुआ यह कैसे कहा जा सकता है। यानी मूल में जो प्रावृत था उसका नाम भी पेज्य प्रावृत और ये नई जो रचना हुई उसका नाम भी कषाय प्रावृत। समाधान, यह शंका ठीक नहीं है, क्योंकि उपसंहार्य और उपसंहारक इन दोनों में कथनचित भेद पाया जाता है। क्या कहने चाहते, जो मूल पेज्य प्रावृत है जो गणधर ने रचा था वो तो बहुत बड़ा प्रावृत है और उसका सार सार लेकर ये कषाय प्रावृत रूप 233 गाथाओं में उसकी रचना हुई थी, तो ये तो उसका उपसंहार किया ना, उसका तात्पर्य बताया, उसका सार निकाला, तो उस अपेक्षा से उसमें तो भेद है ही। पहले तो पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन और ये उसमें सारभूत पूरे के पूरे उसका अर्थ लेकर उसमें से नई रचना हुई, इस अपेक्षा से उसमें भेद है। इसलिए पेज प्रावृत और कषाय प्रावृत इन दोनों को सर्वथा एक मानने में विरोध आता है, अर्थात पेज प्रावृत का सार लेकर कषाय प्रावृत लिखा गया है, इसलिए वे एक न होकर कथनचित दो है। नाम तो दोनों का समान है, फिर भी उसमें ये जो वो ओरिजिनल है और ये उसका सार है, इतना भेद है। कथनचित दो है और इसलिए पेज प्रावृत से कषाय प्रावृत उत्पन्न हुआ यह कहा गया है। फिर शंका, पेज्य दोष प्रावृत का पेज्य प्रावृत यह नाम कैसे बन सकता है। यह पेज्य दोष प्रावृत कहो उसका अकेले पिज्ज प्रावृत क्यों कह रहे हो? उसका समाधान, एक तो दोष पिज्ज अर्थात राग का अविनाभावी है। देखो, पिज्ज का अर्थ होता है राग और दोष यानी वो द्वेष, तो राग द्वेष को एक नाम है कषाय। जब हम राग कहते ना, अकेला राग, राग से भिन्न हो जाओ या राग से अपना भेद ज्ञान करो, तो वह अकेले राग से करते हैं कि राग द्वेष दोनों से करते हैं, शुभ अशुभ विकारी दोनों भावों से करते हैं, तो वहां राग में सभी इंक्लूड हो जाते हैं। इसलिए यहां कहते हैं, एक तो दोष पेज अर्थात राग का अविनाभावी है। जब दोष कहते हैं तो राग का अविनाभावी है। अथवा जीव द्रव्य की अपेक्षा पेज और दोष ये दोनों एक है। अथवा पेज शब्द पेज और दोष इन दोनों का वाचक है, यह बात सुप्रसिद्ध है। यानी जब हम राग कहते हैं तो राग और द्वेष दोनों को मिलकर राग शब्द आता है। तथा सत्यभामा आदि नामों में नाम के एक देश भामा आदि का उल्लेख करने मात्र से उस नाम वाली वस्तु का बोध हो जाता है। बहुत बड़ा हो नाम हो तो हम उसके शॉर्ट में बताते ना, जैसे सत्यभामा के बदले भामा कहा तो उसका हम समझ लेते कि भामा यानी सत्य भामा की बात चल रही है। हमारे भी बच्चों के नाम होते चार चार अक्षर, तो हम उसको दो अक्षर का बना देते हैं ना, पूरा का पूरा नाम नहीं लेते हैं। इसलिए पेज दोष प्रावृत का पेज प्रावृत यह नाम भी विरोध को प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार यद्यपि इस गाथा में कषाय प्रावृत के नाम उपक्रम का ही कथन किया गया है, नाम उपक्रम यानी जब ग्रंथ शुरू हो जाता है तो उसके उपक्रम में उसका नाम बताया दिया जाता है, उसका हेतु आदि जो बातें होती है, तो यहाँ जो नाम का कथन किया गया है, तो भी गाथा के पाहुडम्बिदु इस अंश में आए हुए दु शब्द से देशामर्शक भाव से अनुपूर्वी आदि शेष चार उपक्रम सूचित हो जाते। क्या कहना चाहते हैं? ये उपक्रम किसको कहना, जरा हम आगे निकालते हैं। ये उपक्रम में पांच बातें आती है, देखो नीचे उसके विशेषार्थ में लिखा है। देखो हाँ, ये अनुपूर्वी यानी उसका क्रम, नाम, प्रमाण, वक्तव्यता और अर्थाधिकार, ऐसे इसको मिलकर उपक्रम कहते हैं। उपक्रम में ये पांच बातें बताई जाती हैं। तो यहां नाम तो कह दिया और आगे दु लगा दिया, कषाय पाहुडम्मी दु, तो वहां अनुपूर्वी प्रमाण वक्तव्य का वगैरह नहीं बताते हुए भी वो उसमें गर्भित है, ऐसा समझना चाहिए। इसको कहते हैं देशामर्शक। मराठी में कहावत है ता कहने से ताकवत, वो तो शॉर्ट फॉर्म हो गया, परंतु यहाँ दूसरी बात बताना चाहते हैं। जैसे आगे उदाहरण देके समझाए कि ताल कहेंगे, परंतु अकेला ताड़ वृक्ष की बात नहीं है, सभी वृक्षों के लिए वो एप्लीकेबल है। किसी एक का नाम लिया परंतु वो सबके लिए एप्लीकेबल है, तो उसको कहते हैं देशामर्शक। पार्ट बता दिया और वही बात अन्य जो नहीं बताया है वो भी उसमें गर्भित है, ये समझना चाहिए। तो यहाँ नाम बताया परंतु उसमें ये पांचों ही प्रकार का उपक्रम उसमें गर्भित है, ये बात जाननी चाहिए। देखो फिर पढ़ती हूँ मैं इन तीन लाइन को, विशेषार्थ के ऊपर जो लिखा है। इस प्रकार यद्यपि इस गाथा में कषाय प्रावृत के नाम उपक्रम का ही कथन किया है, या वहां अनुपूर्वी प्रमाण वगैरह नहीं बताया है, अकेला नाम उपक्रम ही बताया है, तो भी गाथा के पाहुडम्बिदु इस अंश में आए हुए दु शब्द से देशामर्शक भाव से, यानी थोड़ा बताया, थोड़ू लख्यू घणू जान जो, ऐसा कुछ होता है ना गुजराती में, क्या कहते हैं? हाँ, टू रीड इन बिटवीन द लाइन्स, ऐसा है ये। अनुपूर्वी आदि शेष चार उपक्रम सूचित हो जाते हैं, वो विशेषार्थ में ये समझाएंगे। उपक्रम पांच प्रकार का है, अनुपूर्वी, नाम, प्रमाण, वक्तव्यता और अर्थाधिकार। इनमें से गुणधर भट्टारक ने नाम उपक्रम का तो कसायाण पाहुडम नाम इस पद के द्वारा स्वयं उल्लेख किया है। ग्रंथ का नाम तो स्वयं बता दिया है, पर शेष चार उपक्रमों का उल्लेख नहीं किया है जिनके उल्लेख करने की आवश्यकता थी, क्योंकि ऐसा पद्धति है, इस प्रकार से उपक्रम किया जाता है। इस पर वीरसेन स्वामी का कहना है कि या तो पाहुड़म में दू, यहां आए हुए दू शब्द से आनुपूर्वी आदि शेष चार उपक्रमों का ग्रहण हो जाता है, नहीं बताया परंतु वो गर्भित है उसमें। अथवा कषायाण पाहुड़म नाम, यह उपलक्षण रूप है, उपलक्षण ने एक बता दिया तो बाकी उसमें गर्भित है ऐसा जानना, उसको उपलक्षण कहते हैं। कल भी बात आई थी ना, केवल ज्ञान इतना बता दिया जीव का गुण, परंतु उसमें अन्य गुण है तो उसको एक को हमने लक्षण के तौर पर बता दिया, उपलक्षण कहते हैं उसको, तो बाकी का भी वहां सद्भाव है ये बात सिद्ध होती है। इसलिए यहां कहते हैं कि देशामर्शक भाव से, भाव हुआ है, भाव से अनुपूर्वी आदि शेष चार उपक्रमों का ग्रहण हो जाता है। ये उपक्रम आदि की चर्चा धवला में भी पहले भाग में बहुत विस्तार से की थी हमने, फिर भी यहां उन्होंने दोबारा विशेषात लिखा है, उसको पढ़ेंगे। उपलक्षण रूप से आया हुआ जो पद या सूत्र अधिकृत विषय के एक देश कथन द्वारा अधिकृत अन्य समस्त विषयों की सूचना करता है, उसे देशामर्शक पद या सूत्र कहते हैं। ये देशामर्शक किसे कहना, देश यानी पार्ट, पार्श उसका थोड़ा हिस्सा, तो कहते हैं जो पद कैसा है वो उपलक्षण रूप, यानी उदाहरण के तौर पर एक को बता दिया या कथन के तौर पर एक बता दिया, उसको कहेंगे उपलक्षण। ऐसा जो पद या सूत्र है वो अधिकृत विषय के एक देश कथन के द्वारा, पूरा कथन नहीं किया है, जितना बताना था उसका एक देश ही बता दिया है, तो वो क्या कहते हैं, अन्य समस्त विषयों की सूचना करता है। वहां अन्य समस्त विषय है ये बात सिद्ध होती है, या उसमें वो गर्भित है ऐसा समझा जाता है, उसको देशामर्शक पद या सूत्र कहते हैं। इसका खुलासा मूलाराधना गाथा 1223 की टीका में किया है, मूलाराधना ग्रंथ में ये बताया है। वहां लिखा है कि जिस प्रकार ताल पलंबम न कप्पदी, इस सूत्र में जो ताल शब्द आया है वहां वह वृक्ष विशेष की अपेक्षा ताल वृक्ष का वाची न होकर, वाची ने वाचक, यानी वहां लिखा तो ताल है परंतु अकेले ताल वृक्ष के बारे में यह कथन नहीं होकर समस्त वृक्ष के लिए ये बात है ऐसे समझना चाहिए। वनस्पति के एक देश रूप वृक्ष विशेष का वाची है, वनस्पति का एक देश रूप यानी सभी वनस्पति का कथन है परंतु एक किसी का नाम लेकर बताया है, अर्थात यहां पर ताल शब्द ताड़ वृक्ष विशेष की अपेक्षा ताड़ वृक्ष को सूचित नहीं करता किंतु समस्त वनस्पति के एक देश रूप से ताड़ वृक्ष को सूचित करता है, यानी वो रिप्रेजेंटेटिव है पूरे वनस्पतियों का, ताकि एक का नाम लिया तो सभी को समझना चाहिए। अतएव ताल शब्द के द्वारा देशामर्शक भाव से सभी वनस्पतियों का ग्रहण हो जाता है, यानी वो जानने में आते हैं। उसी प्रकार गाथा नंबर 421 के आचेलक कुद्देश्य इस अंश में आया हुआ चेल शब्द, चेल का अर्थ क्या होता है मालूम है? आचेलक किसको, अचेलक किसको कहते हैं? अपरिग्रह, परंतु चेलक या अचेलक वो तो वस्त्र के लिए आता है शब्द, तो अकेले वस्त्र का धारी नहीं है ऐसा नहीं बात। आचेलकत्व ने जिसके चेल यानी वस्त्र का ग्रहण नहीं है ऐसा दिगंबर हम कहेंगे, पर अकेले नग्न दशा ये उसका लक्षण नहीं है, कोई भी परिग्रह नहीं होना, तो वस्त्र ये देशामर्शक है, नाम तो अकेले वस्त्र का लिया, वस्त्र रहित, जब वस्त्र रहित कहेंगे तो कोई भी अन्य परिग्रह है ही नहीं उनके, ये बात सिद्ध होती है। हाँ देखो, इस अंश में आया हुआ चेल शब्द समस्त परिग्रह का उपलक्षण रूप है, अतः आचेलक के पद के द्वारा परिग्रह मात्र के त्याग का ग्रहण हो जाता है। यही ये बात मूलाराधना की बात यहां इन्होंने बता दी। मूलाराधना के इस कथनानुसार प्रकृत में यानी अभी वर्तमान में जो हमारा विषय चल रहा है यहां पर सांप्रत में, कषाय प्रावृत यह पद भी, पद का अर्थ होता है शब्द, यह पद भी आनुपूर्वी आदि पांचों उपक्रमों के एक देश रूप से गाथा में आया है। अकेला नाम बताया है परंतु वहां पांचों ही उपक्रम है ऐसा जानना चाहिए, इसलिए वह देशामर्शक भाव से आनुपूर्वी आदि शेष चार उपक्रमों का भी सूचन करता है। अब आगे, अब गाथा में दो प्रकार से अर्थात गाथा में आए हुए दु शब्द से या कसायान पाहुडम नाम इस पद के देशामर्शक रूप होने से सूचित किए गए शेष उपक्रमों के कथन करने के लिए यति ऋषभ आचार्य चूर्णी सूत्र कहते हैं। देखो, कषाय प्रावृत ओरिजिनल रचना तल हमने देखा था ना, वो किसने लिखी है, पेज्य प्रावृत से कषाय प्रावृत आया, उसकी रचना गुणधर आचार्य ने की 233 गाथाओं में। हाँ, और उस पर से चूर्णी सूत्र लिखा यति ऋषभ आचार्य, तो उसमें जो शब्द आया है उस पर से चूर्णी सूत्र में उसका खुलासा भी कर रहे हैं। अन्य जो उपक्रम नहीं बताए हैं वो चूर्णी सूत्र वाले यहां बताएंगे। यति ऋषभ आचार्य चूर्णी सूत्र कहते हैं। अब जहां जहां अभी ये जो फ्लावर टाइप जो खून ये जो चिन्ह है वो चूर्णी सूत्र का अर्थ में है, ऊपर उन्होंने प्राकृत में लिखे है, नीचे उसका हिंदी अर्थ है। और जहां ये जो दूसरी साइन है ना 8-9 वगैरह नंबर डाले हैं, ये तो वीरसेन आचार्य के हैं। और जहां जहां गाथा आएगी जो कल हमने देखी थी, कल जो 9 पेज पर जो एक नंबर डाला था वो तो गाथा सूत्र है, कषाय प्रावृत के तो गाथा सूत्र है। जहां ये फूल जैसा चिन्ह है वो तो चूर्णी सूत्र है, और जहां ऐसे विशिष्ट साइन करके नंबर दिए हैं वो वीरसेन आचार्य की टीका है, धौला जिसको जय धौला टीका है। अब हम ये चूर्णी सूत्र का यहाँ हिंदी अर्थ देखते हैं। अच्छा, ऊपर पढ़ेंगे, हाँ सूत्र पढ़ेंगे चूर्णी सूत्र। नानप्पवादस्य पूवस्य दशमस्य वत्थुस्य तदीयस्य पाहुडस्य पंचभ्यो वक्कम। इसका अर्थ सुगम है ना, देखो ज्ञान प्रवाद के, ज्ञान प्रवाद पूर्व की दसवीं वस्तु के तीसरे प्रावृत का, तदीयस्य ने तृतीय, तीसरे प्रावृत का उपक्रम पांच प्रकार का है, पंचभ्यो वक्कम। तम जहां वो इस प्रकार, आणुपूवी नामम प्रमाणम वत्तव वदा अत्थाहियारो छेदी। कौन से है, तो आणुपूर्वी नाम प्रमाण वक्तव्यता और अर्थाधिकार। अब इस पर ये जो 9 संख्या लिखी है, आंकड़ा लिखा है, वो तो जय धौलाकार ने, वीरसेन आचार्य ने इस पर टीका लिखी है, जिसके द्वारा श्रोता प्रावृत को उपक्रम्यते अर्थात समीप करता है उसे उपक्रम कहते हैं। यानी उससे उसके संबंध में उसको कुछ जानकारी होती है, उसका नाम सुनेंगे, कितना बड़ा है कहेंगे, क्या उसमें विषय है, तो उनको पढ़ने की इच्छा हो जाएगी ना, उसको पढ़ेंगे वो। अर्थात जिसके द्वारा, जिससे श्रोता को प्रावृत के क्रम, अनुपूर्वी ने क्रम, नाम विषय आदि का पूरा परिचय प्राप्त हो जाता है वह उपक्रम कहलाता है। यानी ग्रंथ के शुरू में ये उपक्रम किया जाता है, उससे क्रम बताया दिया जाता है, नाम बताया जाता है, कितने प्रमाण वाला ग्रंथ होगा, वो भी बताया जाता है, उसका विषय क्या है वो सारी बातें पहले ही बताई दी जाती हैं। अब आगे पढ़ते हैं। शंका, उपक्रम किस लिए कहा जाता है? समाधान, नहीं, क्योंकि जिन मनुष्यों ने किसी शास्त्र के नाम अनुपूर्वी, प्रमाण, वक्तव्यता और अर्थाधिकार नहीं जाने हैं, वे उस शास्त्र के पठन पाठन आदि क्रियाफल के लिए प्रवृत्ति नहीं करते। अर्थात नाम आदि जाने बिना मनुष्यों की प्रवृत्ति प्रावृत के पठन पाठन में नहीं होती है, अतः उनकी प्रवृत्ति कराने के लिए उपक्रम कहा जाता है। अब पांच प्रकार के इस उपक्रम का कथन करने के लिए गाथा सूत्र और चूर्णी सूत्र के द्वारा सूचित किए गए श्रुत स्कंद का प्ररूपण करते हैं, वह इस प्रकार है। अभी जो गाथा में भी नहीं है और चूर्णी सूत्र में भी नहीं, ऐसा विस्तार यहाँ बताएंगे। अभी यहाँ ज्ञानों का वर्णन करेंगे विस्तार से, मति ज्ञान के भी भेद बताएंगे, फिर श्रुत ज्ञान के भी भेद बताएंगे, क्योंकि ये जो पांचवा पूर्व ऐसी बात आई ना, तो वो पांचवा पूर्व क्या होता है, तो उसके लिए श्रुत ज्ञान के भेद बता के फिर उसके दृष्टिवाद को बता के वो पूर्व की बात उठाएंगे। तो अब हम क्रम से पढ़ेंगे यहाँ। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपरे ज्ञान और केवल ज्ञान के भेद से ज्ञान पांच प्रकार का है। उनमें से जो ज्ञान पांच इंद्रिय और मन से उत्पन्न होता है वह मति ज्ञान है। देखो जब जब ये परिभाषा आती है ना पांच इंद्रिय और मन से, तो लोगों को ऐसा होता है पांच इंद्रिय और मन सभी जहां होंगे उसी को मति ज्ञान कहेंगे। तो फिर प्रश्न पूछते हैं, क्या एक इंद्रियों को मति ज्ञान नहीं है? उनके तो मन नहीं है, तो उनके मति ज्ञान कैसे होगा? हाँ, तो एक इंद्रियों से भी जो जानना होगा वो भी मति ज्ञान है। ऐसा नहीं कि ये छह की आवश्यकता है, ये छह तो संगी पंचेंद्रियों को हो गए, असंगी पंचेंद्रियों को केवल पांच इंद्रिया ही होगी, तो उनके उस ज्ञान को मति ज्ञान कहेंगे। दो इंद्रिय वाले के दो इंद्रिया ही है, उसके ज्ञान को भी मति ज्ञान कहेंगे। जरूरी नहीं कि ये सभी को होना चाहिए, ऐसा भी बहुतों ने सूचित किया। और शब्द क्यों डाला फिर, अथवा कहना था? अमेरिका में भी बात उठाई थी किसी ने। तो ऐसी परिभाषा सब जगह प्राप्त है, परंतु उसका अर्थ हमें ठीक तरह से समझना है। वह मति ज्ञान, अभी मति ज्ञान के भेद बताएंगे। अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा के भेद से चार प्रकार का है। यानी ये जो मति ज्ञान होता है सबसे पहले अवग्रह होता है, फिर वो जो अधिक अधिक कैसे होते हैं उसकी चर्चा आएगी। तो उस पहले अवग्रह, फिर वो इहा रूप होता है, फिर अवाय और फिर धारणा। इस प्रकार पांचों इंद्रियजन्य मति ज्ञान और मानस मति ज्ञान, मानस है मन से उत्पन्न हुआ, ये छहों अर्थावग्रह, व्यंजनावग्रह। अब जहां व्यंजनावग्रह कहते हैं, तो व्यंजनावग्रह वो मन और चक्षु से नहीं होता। व्यंजनावग्रह जैसे स्पर्शन इंद्रिय के द्वारा व्यंजनावग्रह होता और बाद में अर्थावग्रह होता। हम देखते हैं कि मच्छर बैठकर काट रहा है, दिख रहा है, परंतु हमें स्पर्शन इंद्रिय के द्वारा उसका सेंसेशन नहीं होता है ना, उसकी थोड़ा टाइम लगता है। तो पहले तो अर्थावग्रह होता है, सॉरी व्यंजनावग्रह होता है और फिर अर्थावग्रह होता है। हम देखते हैं कि तेल का छींटा उड़ता है और फिर वो जलन तो थोड़े टाइम के बाद चालू हो जाती है। चक्षु के द्वारा तो दिखाई दिया, परंतु स्पर्शन इंद्रिय के द्वारा जानने में आने में थोड़ा टाइम। तो चक्षु इंद्रिय और चक्षु और मन के लिए ये व्यंजनावग्रह नहीं होता, डायरेक्ट उसका अर्थावग्रह होता है। पहले में पहले उसके जो भेद है मति ज्ञान के भेद इटसेल्फ, वो क्रम से होता है। पहले अवग्रह, फिर इहा, अवाय और धारणा, ये तो चार भेद मति ज्ञान के भेद हुए। उसमें भी पांच इंद्रिय और मन से होने वाले तो अर्थावग्रह तो सबके है, परंतु व्यंजनावग्रह चार को ही होगा, स्पर्शनेन्द्रिय द्वारा, रसनेन्द्रिय द्वारा, घ्राणेन्द्रिय द्वारा और कर्णेन्द्रिय द्वारा। उनमें तो पहले व्यंजनावग्रह होगा और बाद में अर्थावग्रह होगा। मति ज्ञान के भेदों में अभी इसका बेस रखकर फिर आगे चलेंगे। मति ज्ञान के भेद, फिर उसमें निमित्त रूप इंद्रिय और मन उसकी अपेक्षा से भेद करेंगे। पहले चार लिए ना, अभी उसको छह से गुणा करेंगे, 24 तो ये हो जाएंगे, और एक्स्ट्रा व्यंजना वगैरह चार में होता है तो 28 तो ये हो जाएंगे। हाँ, अर्थावग्रह से आगे के तो है ही सबके लिए, छहों के लिए अर्थावग्रह, उसके बाद इहा, अवाय और धारणा, ये सबके लिए छहों के लिए है, तो 24 तो ये हो गए। इन एडिशन चक्षु और मन छोड़कर जो अन्य जो चार है उनके लिए व्यंजनावग्रह पहले होगा, तो वो एडिशनल चार हो गए, तो 28 तो यहाँ भेद हो गए। हाँ, व्यंजनावग्रह नहीं होता, यानी डायरेक्ट उसका अर्थावग्रह चालू हो जाता है। अब यहां से आगे जो भेद है वो विषय की अपेक्षा करेंगे। मति ज्ञान के जो 336 भेद होते हैं ना, वो कैसे समझना, पहले ये हमने चार किए, व्यंजनावग्रह को अलग रखा, तो चारों में ही पांच इंद्रिय और मन, तो ये 6 × 4 हर एक में हो गए, 4 × 4 तो 24 हो गए। अब ये 6 के बदले 4 में व्यंजनावग्रह भी होता है, तो 4 एडिशन हो गए, 28 हो गए, 24 और 4 = 28 हो गए। अब विषयों की अपेक्षा से जो भेद होते हैं ना, 12 एक एक विद, बहु बहुविद वगैरह, उसकी अपेक्षा से उसमें हर एक में ये 12 भेद हो गए। अब हम पढ़ेंगे, देखो ये ब्रैकेट में लिखा है नीचे चौथी लाइन में, व्यंजनावग्रह मन और चक्षु से नहीं होता, इसलिए केवल चार इंद्रियां ग्रहण करना चाहिए, यानी चार इंद्रियों के बारे में व्यंजनावग्रह होता है। इहा, अवाय और धारणा के भेद से, वो ध बराबर करना, घ दिख रहा है, 28 प्रकार के हो जाते। अभी ये समझ में आए? हाँ, पांच इंद्रिय और मन के द्वारा अर्थावग्रह है, इहा अवाय धारणा है, और चार इंद्रियों के द्वारा व्यंजनावग्रह है, ये सब 28 भेद हो गए। अब ये विषय के भेद बता रहे हैं, बहु बहुविध, क्षिप्र, अनिसृत, अनुक्त और ध्रुव, तथा इनके विपरीत यानी इसके उल्टे, एक एकविध, अक्षिप्र, निसृत, उक्त और अध्रुव, इन 12 प्रकार के पदार्थों को, एक को के ऊपर रफा आया, मति ज्ञान विषय करता है, विषय करता है ना, ये उसके विषय है, मति ज्ञान के विषय। पहले तो ज्ञान के भेद बताए, फिर उसमें निमित्त होने वाले इंद्रिय मन के भेद बताए, और उसके बाद विषय के भेद होते हैं। ये सब को आपस में गुणा करेंगे ना, कॉम्बिनेशंस, तो ये 336 हो जाएंगे। अतः इन्हें पूर्वोक्त 28 प्रकार के मति ज्ञानों में पृथक पृथक मिला देने पर मति ज्ञान 336 प्रकार का हो जाता है। क्षिप्रावग्रह आदि का अर्थ जिस प्रकार वर्गणा खंड में कहा है, उसी प्रकार यहाँ भी प्ररूपण कर लेना चाहिए। ये वर्गणा खंड में हमने विस्तार से देखा था धवला में, तो वहाँ कहते हैं कि क्योंकि विशेषार्थ लिखने में वाले भी विशेषार्थ नहीं, ये तो मूल जय धवला वालों ने लिखा है, विसेनाचार्य ने लिखा है, विशेषार्थ तो अब कहेंगे, यहाँ भी कुछ बताएंगे विशेषार्थ में, अब पढ़ेंगे विशेषार्थ। पूर्व में गई सूचना के अनुसार, गई की गई अवग्रह आदि का कथन षटखंडागम के वर्गणाखंड की धवला टीका के अनुसार किया जाता है। पूर्व में की गई यानी जय धवला टीका में ही बताया है कि धवला टीका में इसका वर्णन विस्तार से आ चुका है, अब विशेषार्थ में उसको यहाँ पर दे रहे हैं। अवग्रह के दो भेद है, व्यंजनावग्रह और अर्थावग्रह। प्राप्त अर्थ के प्रथम ग्रहण को व्यंजनावग्रह और अप्राप्त अर्थ के ग्रहण को अर्थावग्रह कहते हैं। ये प्राप्त और अप्राप्त किसको कहना वो भी अभी बता रहे हैं। जो पदार्थ इंद्रिय से संबद्ध होकर जाना जाता है वह प्राप्त अर्थ है, और जो पदार्थ इंद्रिय से संबद्ध न होकर जाना जाता है वह अप्राप्त अर्थ है। चक्षु और मन अप्राप्त अर्थ को ही जानते हैं, ही लगाया। क्या कहते हैं? हम किसी पदार्थ को देखते हैं तो वो पदार्थ आके आंखों में चिपकता है तभी देखते हैं ना। अरे आंखों में कुछ आके चिपक जाए तो दिखाई भी नहीं देगा, तो वो दूर से ही देखता है, इसलिए अप्राप्त अर्थ को जानता है, ऐसा कहा। शेष चार इंद्रिया प्राप्त और मन तो सभी को जान सकता है। मन के द्वारा तो हम आलोकाकाश को भी जान रहे, उसमें क्या है, तो उसका कॉन्टेक्ट होने की जरूरत नहीं है। शेष चार इंद्रिया प्राप्त और अप्राप्त दोनों प्रकार के पदार्थों को जान सकती है। क्या कहते हैं? प्राप्त को तो अभी चक्षु तो दूर से जानते हैं, पर स्पर्शन तो प्राप्त को ही जानेगा कि नहीं, ऐसे ये प्रश्न है। दूर से कैसे जानेगा, प्रश्न ख्याल में है? यहाँ क्या कहा, अन्य जो चार इंद्रिया है वो अप्राप्त को भी जानती है। स्पर्शन रसना घ्राण और श्रोत्र इंद्रिया प्राप्त अर्थ को जानती, यह तो स्पष्ट है, पर युक्ति से उनके द्वारा अप्राप्त अर्थ का जानना भी सिद्ध हो जाता है। उसके लिए उन्होंने उदाहरण दिया है, पृथ्वी में जिस ओर निधि पाई जाती है उस ओर एकेंद्रियों में धव आदि वनस्पति का एक जीवों का उस ओर प्रारोह को छोड़ना देखा जाता है। प्रारोह ने उसके रूट्स, मूल। अभी यहां जो लिखा है वो तो छोड़ो, परंतु हम देखते हैं ना कि वनस्पति है और पानी किसी डायरेक्शन में है, दूर है, तो उस डायरेक्शन में उसके मूल बढ़ते हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि दूर से भी जानने में आता है। यहां तो कोई अन्य बात है कि पृथ्वी में कोई धन गड़ा हो तो एक इंद्रियों में धव आदि वनस्पति की जीवों का वहां प्रारोह को छोड़ना देखा जाता है, इत्यादि हेतुओं से जाना जाता है कि स्पर्शन आदि चार इंद्रियों में भी अप्राप्त अर्थ के जानने की शक्ति रहती है। समय ज्ञान चंद्रिका में तो इसके लिए ये देखा कि वो बीच में सूक्ष्म पुद्गल स्कंद होते हैं, उसके द्वारा वो प्राप्त हो जाता है, ऐसा भी आया है। और प्राप्त और अप्राप्त का भी दो प्रकार से अर्थ किया है उसमें, आपको याद है, आपने तो टाइप किया है ना, तो उसमें देखना है क्या, प्राप्त के दो प्रकार से अर्थ किए है आपके पीछे है समय ज्ञान चंद्रिका। वो काला काला पुस्तक दूसरा भी व्हाइट कवर वाला, व्हाइट भी होगा, किसी को देखना है तो जरा देना। एक ज्ञान मार्गना में अभी क्या आफत आएगी, कोई रेफरेंस देखना है तो हमें तो ये ढूंढारी भाषा के पेज के याद है, अभी हिंदी पेजेस आने वाले हैं अभी, उसमें ढूंढने में तकलीफ होने वाली है। ज्ञान मार्गना 500 के पहले पहले हाँ, व्यंजन का अर्थ बताया उन्होंने, व्यंजन अवग्रह और अर्थ अवग्रह, देखो 443 पृष्ठ पर। मति ज्ञान का विषय दो प्रकार का है, एक व्यंजन और एक अर्थ। तहां जो विषय इंद्रियों द्वारा प्राप्त होता है, स्पर्शित होता है, उसे व्यंजन कहते हैं। मैं डायरेक्ट उसका भाषांतर पढ़ रही हूँ क्योंकि ढूंढारी में फिर समझने में तकलीफ होगी। जो प्राप्त नहीं होता है उसको अर्थ कहते हैं, ख्याल में है? जो प्राप्त होता है, हाँ, जो प्राप्त नहीं होता उसको अर्थ कहते हैं। उसके विशेष ग्रहण रूप व्यंजनावग्रह और अर्थावग्रह ऐसे भेद होते हैं। तो यहां कहते हैं तत्वार सूत्र की टीका में तो ऐसा अर्थ किया है कि जो व्यंजन किसको कहते हैं, अव्यक्त शब्दादिक को व्यंजन कहा है, शब्द को ही जो अव्यक्त है उसी को व्यंजन कहा है, और यहाँ तो कहते हैं प्राप्त अर्थ को व्यंजन कहते हैं, तो ये डिफरेंस हुआ ना, विरोध हुआ अर्थ करने में, उसका समाधान। व्यंजन शब्द के दो अर्थ है, विगतम अंजनम व्यंजनम, यानी दूर हुआ है अंजन यानी व्यक्त भाव जिसका, उसको व्यंजन कहते हैं। और तत्वार सूत्र की टीका में इसी का मुख्य अर्थ किया है। और दूसरा अर्थ है व्यज्यते मृक्षते प्राप्यते इति व्यंजन, जो प्राप्त होता है उसको व्यंजन कहते हैं। दो अर्थ किए ना, पहला कौन सा है, व्यक्त भाव है वो उसको व्यंजन कहा, और यहाँ जो प्राप्त होता है उसको व्यंजन कहा, यहाँ यही अर्थ मुख्य ग्रहण किया है। कर्णादिक इंद्रियों के द्वारा शब्दादिक अर्थ प्राप्त होने पर भी, प्राप्त होने पर हमने देखा ना अभी आकर कोई अभी मच्छर बैठ गया, प्राप्त तो हुआ है, कांटेक्ट में तो आ गया, प्राप्त होने ने कांटेक्ट में आना, तो स्पर्शन इंद्रिय के कांटेक्ट में आने पर भी यावत व्यक्त न हो, जानने में ना आता, ऐसा नहीं कहा, क्योंकि ये जानने के भेद है, व्यंजनावग्रह नहीं जानने का भेद नहीं है, जानने का भेद है, परंतु व्यक्त नहीं हो रहा है। व्यक्त होने से पहले जो अव्यक्त रूप से वहां कोई जो पर्याय चली है ज्ञान की, उसको यहाँ अव्यक्त कहा, उसको अप्राप्त कहा। उस तावत व्यंजनावग्रह है, व्यक्त भय अर्थावग्रह है, यानी यहाँ व्यक्त होने का कॉन्टेक्ट में आना ऐसा अर्थ कहीं लिया है, व्यक्त यानी व्यंजन का अर्थ क्या होता है, तो कॉन्टेक्ट में आना, और यहाँ व्यक्त व्यंजनावग्रह किसको कहे, जब तक अव्यक्त है तब तक व्यंजनावग्रह, और व्यक्त हो जाता है तब अर्थावग्रह, ये दोनों ही प्रकार से अर्थ किए जाते हैं। इसके लिए उन्होंने दृष्टांत दिया, जैसे नवा माटी का शरावा, यानी मिट्टी का जो कोई बर्तन होगा, घट है या कोई अन्य भी, तो उसके लिए बूंद डालेंगे तो उसमें सोख हो जाते हैं, पता नहीं चलता है, तो जल के बूंद के द्वारा सिंचन करते हैं तो पहले दो चार आदि जल की बूंदें व्यक्त नहीं होती है, शोषित हो जाती है, और बहुत बार जल की बूंदें पड़ने पर व्यक्त हो जाती है। वैसे ही कर्णादिक के द्वारा जो प्राप्त हुआ शब्दादिक, यानी उसके कॉन्टैक्ट में तो आ गए हैं, जब तक वो व्यक्त रूप ज्ञान नहीं होता, कॉन्टैक्ट में तो आए हैं फिर भी जब तक व्यक्त नहीं है, यानी मैंने शब्द सुना है ऐसा जब तक व्यक्त ज्ञान नहीं होता है, तब तक उसको व्यंजनावग्रह कहते हैं। हाँ, अव्यक्त को, परंतु वो प्राप्त है, उस अपेक्षा से वो कांटेक्ट में आया है, परंतु व्यक्त जब तक नहीं होता तब तक उसको व्यंजनावग्रह कहते हैं। बहुत समय पर्यंत इंद्रिय और विषयों का संयोग रहे, व्यक्त रूप ज्ञान हो जाता है, तब उसको अर्थावग्रह कहते हैं। पहले संयोग में आते ही अव्यक्त ज्ञान हुआ है, बहुत काल तक संयोग उसके कांटेक्ट में रहने पर व्यक्त हो जाता है, तब उसको अर्थावग्रह कहते हैं। ये दोनों ही प्रकार से यहाँ अर्थ बताए हैं। और मन और इंद्रिया तो दूर से ही पदार्थों को जानते हैं, और जब जानते हैं तो डायरेक्ट जानते ही है, वहां अव्यक्त की बात नहीं होती, इसलिए उनको अकेला अर्थावग्रह कहा है। मन और चक्षु, मैंने क्या कहा, मन और चक्षु। अभी हम यहाँ आते हैं, अपना 13वें पृष्ठ पर चल रहा था, हाँ, प्राप्त और अप्राप्त का अर्थ है, प्राप्त होना है उसके कांटेक्ट में आना, और यहाँ तो कहते प्राप्त होने पर भी शुरू में जो अव्यक्त ज्ञान है उसको व्यंजनावग्रह कहा था। और इंद्रिया, चक्षु इंद्रिय और मन तो दूर से ही पदार्थों को जानते हैं, उनमें प्राप्त होने पर वो जानते हैं, ऐसी बात वहां नहीं है। नहीं नहीं नहीं, उसमें तो डायरेक्ट है, उसमें तो प्राप्त से जानते हैं, नहीं दूर से ही जानते हैं, और उसमें तो अर्थावग्रह ही डायरेक्ट होता है। हाँ, व्यक्त हो जाता है, पर चक्षु में डायरेक्ट व्यक्त ही होता है, वो तो दर्शनोपयोग के बाद की ज्ञान की बात चल रही है। तो दर्शन हो गया वो कुछ है वो ज्ञान में ही आता है, कुछ है जब समझ में आता है वो ज्ञान ही हो जाता है, वो अवग्रह में आएगा। कुछ कुछ है मालूम पड़ा ना, कुछ है इतना तो मालूम पड़ा तो अवग्रह हुआ, फिर वो क्या है जिज्ञासा पूर्वक जाना यहा हो गई, फिर नक्की किया वो अवाय हुआ, और फिर कालांतर में भी स्मृति में आ सकता है उसको धारणा कहेंगे। अवग्रह और ये दर्शनोपयोग एक नहीं, दर्शनोपयोग के बाद अवग्रह होगा। यहाँ तो ज्ञान की अकेली बात चल रही है, दर्शनोपयोग उसके पूर्व में हो चुका। देखो अभी हम ये वनस्पति का वहां हेतु भी दिया था, ये बीच में है अर्थावग्रह और व्यंजनावग्रह के पहले जो लक्षण कहे मिला, उससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि अर्थावग्रह और व्यंजनावग्रह में केवल शीघ्र ग्रहण और मंद ग्रहण की अपेक्षा अथवा व्यक्त ग्रहण और अव्यक्त ग्रहण की अपेक्षा भेद नहीं है, क्योंकि उक्त अवग्रहों के इस प्रकार के लक्षण मानने पर दोनों ही अवग्रहों के द्वारा 12 प्रकार के पदार्थों का ग्रहण प्राप्त नहीं होता है। यहाँ तो ये व्यक्त और अव्यक्त की बात की ना, तो कहते हैं 12 प्रकार के जो विषय की बात की थी, एक विधि वगैरह क्षिप्र, ये 12 प्रकार उसमें घटित कैसे हो गए, इसलिए वो व्यक्त अव्यक्त की बात नहीं कर रहे हैं, प्राप्त अप्राप्त की बात अकेले ले ली यहाँ पर, ये दोनों ही मत आते हैं। यहाँ अवाय और धारणा अवग्रह पूर्वक ही होते हैं, इसलिए प्राप्त अर्थ में व्यंजनावग्रह अर्थावग्रह इहा अवाय और धारणा इस क्रम से ज्ञान होते हैं। प्राप्त अर्थ की बात की है, कॉन्टैक्ट वाले जो जानते हैं, पहले व्यंजनावग्रह होगा, फिर अर्थावग्रह, इहा अवाय और धारणा। चार इंद्रियों के बारे में ये भेद ही समझना, हाँ एडिशनल, क्योंकि हमने 24 में एडिशन किए ना ये चार के, और सभी पूरे 28 को 12 से गुणा किया है, यानी स्पर्शन आदि इंद्रिय जो है, अन्य जो इंद्रिय चक्षु और मन के अलावा, उनमें ये एडिशनल प्रकार है, यानी उनमें अर्थावग्रह होने से पूर्व व्यंजनावग्रह होगा, ऑप्शनल है ऐसी बात नहीं है, उनके बारे में 5 हो जाएंगे, स्पर्शन इंद्रिय के बारे में, रसना इंद्रिय के बारे में आदि में 5-5 हो जाएंगे। हम कितने भेद करते हैं, अवग्रह या अवाय धारणा, परंतु अवग्रह के 2 भेद करने पड़ेंगे उनके बारे में, स्पर्शन इंद्रिय आदि जो 4 इंद्रिया है उनके बारे में, स्पर्शन रसना घ्राण और कर्ण। तो प्राप्त अर्थ में ये 5 भेद बताए प्राप्त अर्थ के लिए, और अप्राप्त अर्थ में अर्थावग्रह इहा अवाय और धारणा इस क्रम से ज्ञान होते हैं। अवग्रह के द्वारा ग्रहण किए गए पदार्थ में विशेष आकांक्षा रूप ज्ञान को अधिक जानने की उत्सुकता है ना, वहां पर इहा कहते हैं, और निर्णयात्मक ज्ञान को अवाय कहते हैं। इस पर से भी बहुत विस्तार से चर्चा हुई थी कि अभी निर्णय नहीं, तक इहा ज्ञान को क्या संशय ज्ञान कह सकते हैं, तो नहीं कह सकते। संशय तो दोलायमन रूप ज्ञान है, ये तो सीपे के चांदी है, मैं आत्मा हूँ क्या शरीर हूँ, ये 2 विरुद्ध कोटि के, उसमें वो तो दोलायमान है, वो बात नहीं है यहाँ पर। निर्णय के प्रति बढ़ने वाला है, जिज्ञासा जहाँ है जानने की और अधिक जानने की, उसका निर्णय करने की, तो उसको इहा कहा है। जब निर्णय हो गया उसको अवाय कहेंगे। और कालांतर में न भूलने के कारणभूत संस्कारात्मक ज्ञान को धारणा कहते हैं, यानी ये ऐसे ज्ञान के संस्कार हो जाते कि कालांतर में भी नहीं भूलते, तो उसको धारणा कहते, धारणा ज्ञान, यानी हम उन्हीं बातों को स्मरण में आते हमारी बातें कि जो धारणा रूप से उसके अंदर ज्ञान में संस्कार है, यानी वो उतना ज्ञान की पर्याय, हर पर्याय में वो चलते रहते हैं और किसी विशिष्ट समय में उसको याद आ जाते हैं, ऐसा है ना, भले धारणा में है। ऐसी बात नहीं कि हम उस हर एक चीज को अभी वर्तमान में याद कर सकते हैं, कभी कभी बिना उसके कोई यानी उसका प्रयास किए बिना भी, अरे कल तो याद नहीं आ रहा था, अरे उस आदमी का नाम ये है, कभी जब हम याद करने की कोशिश करते तो भी याद आता भी नहीं है, परंतु उसके संस्कार है तब वो तो कालांतर से भी कहीं भी उसकी स्मृति में आ सकता है। हम ये जो देखते हैं ना जाति स्मरण आदि, ये नौ नौ भोग के बाद वो स्मृति में आ गया, यानी जाति स्मरण में आ गया, तो ये धारणा रूप से था तभी बाद में जाति स्मरण में आ सकती है। जो धारणा तक जाता नहीं है, अवाय तक निर्णयात्मक हुआ, जान लिया, छूट गया। अब हम पूछेंगे एग्जैक्ट कोई तारीख ले लो, अभी दो चार महीने पूर्व की, उस दिन क्या खाया था, अरे क्या पता क्या खाया था, परंतु विशिष्ट कोई दिन है, या हमने दिवाली के दिन क्या बनाया था, वो तो याद रह भी सकता है या कोई बचपन की विशिष्ट बातें जो है वो तो याद, बहुत अच्छी तरह से याद है, और कितनी घटनाएं ऐसी हो जाती तो भूल जाते हम ये विशेष मारवाड़ी लोगों में होते हैं, वो शादी में ससुराल में जाते हैं और वो ऐसे कुछ गीत बनाते हैं, कुछ कुछ करते हैं। इस प्रकार स्पर्शन आदि चार इंद्रियों की अपेक्षा व्यंजनावग्रह वो करना उसका, व्यंजनावग्रह के चार भेद तथा पांचों इंद्रिय और मन की अपेक्षा अर्थावग्रह इहा अवाय और धारणा के 24 भेद, ये सब मिलकर मति ज्ञान के 28 भेद होते हैं, तथा ये 28 मति ज्ञान बहु आदि 12 प्रकार के पदार्थों के होते हैं। किसका ज्ञान हुआ, विशिष्ट पदार्थ का ज्ञान हुआ तो हम कहते विषय क्या है, उस ज्ञान का विषय क्या है, उसको कहते ये पदार्थों के होते हैं, इसलिए मति ज्ञान के सब भेद 336 हो जाते हैं। बहु एक, बहुविध एकविध, क्षिप्र अक्षिप्र, अनिसृत निसृत, अनुक्त, ये निसृत के बाद में उन्होंने विसर्ग लगाया, उसकी जरूरत नहीं है, उक्त, ध्रुव और अध्रुव, ये पदार्थों के 12 भेद हैं। बहु शब्द, अब बहु का अर्थ कैसा है, संख्या और वैपुल्य दोनों अर्थों में आता है, यानी एक से अधिक हो तो भी बहु कहेंगे, और विपुलता है, अधिकता है, तभी भी बहु शब्द आता है, अतः यहाँ बहु से दोनों अर्थों का ग्रहण कर लेना चाहिए, इससे विपरीत को एक या अल्प कहते हैं। बहुविध किसको कहना भी है, तो बहुविध का अर्थ होता है प्रकार, बहुविध में बहुत जातियों के अनेक पदार्थ लिए हैं, और एक विध में एक जाति के पदार्थ लिए हैं, एक विध ने एक प्रकार के, एक प्रकार के में अनेक अनेक पदार्थ तो अनेक हो गए परंतु एक प्रकार के है, नहीं समझे हा? अभी धान्य है, बहुत अलग अलग धान है, तो हमने एक प्रकार का गेहूं धान लिया, उसमें तो गेहूं के दाने तो बहुत होगी ना, बोरी भर के भी हो गए, तो एक प्रकार का धान हुआ, वो एक विध कहलाएगा, और अनेक गेहूं भी है, चावल भी है, दालें भी है, वो बहुविध हो जाएंगे। हाँ गौ ऐसे एक विध, वो जाति एक हो गई, जहां व्यक्तियों की अपेक्षा बहुत का ज्ञान होता है वहां बहुविध ज्ञान कहलाता है। बहु और बहुविध में यही अंतर है, व्यक्ति ने एक एक सिंगल, अलग अलग ऐसा लेना। इसी प्रकार एक और एक विध में या अल्प और अल्प विध में भी अंतर समझना चाहिए। अभी क्षिप्र ज्ञान किसको कहना, नया सकोरा जिस प्रकार शीघ्र ही पानी को ग्रहण कर लेता है, उस प्रकार अतिशीघ्र अर्थ के ग्रहण करने वाले ज्ञान को करने वाले हुए क्षिप्र ज्ञान कहते हैं, और धीरे धीरे जानने वाले ज्ञान को अक्षिप्र ज्ञान कहते हैं। यह शीघ्र चलने वाली रेलगाड़ी और शीघ्र गिरने वाली जलधारा क्षिप्र विषय कहलाता है। देखो वहां तो पहले उन्होंने क्षिप्र तो ज्ञान पर घटाया, जल्दी ग्रहण करना, उसको क्षिप्र कहा था। और हमने जो उदाहरण देखा था, जैसे बिजली है, चमकती है ना, जल्दी हो जाए नहीं तो, तो यहाँ तो रेलगाड़ी को ले, बहुत फास्ट जा रही है, उसको ग्रहण करना, उसको जानना, वो क्षिप्र ज्ञान है, क्षिप्र विषय कहलाता है। और इससे विपरीत अक्षिप्र विषय कहलाता है, और उनके ज्ञान को क्रमशः क्षिप्र ज्ञान और अक्षिप्र ज्ञान कहते हैं। वस्तु के एक देश के ग्रहण काल में ही वस्तु का ज्ञान हो जाना, उपमा द्वारा उपमेय का ज्ञान होना, क्या कहते हैं, वस्तु के एक देश के ग्रहण काल में संपूर्ण वस्तु को जान लेना, वो पार्ट ऑफ वस्तु जानी और उसके द्वारा ही संपूर्ण वस्तु को जान लिया, या उपमा द्वारा उपमेय का ज्ञान होना, उपमा देकर समझाते हैं और उसके द्वारा ज्ञान तो हमारे हुआ, जिसका उपमा देकर जिसको बताना था ना उसका ज्ञान हो जाना, अनुसंधान प्रत्यय और प्रत्यभिज्ञान प्रत्यय ये सब अनिसृत ज्ञान है। और इससे विपरीत निसृत ज्ञान कहलाता है। यानी ऐसा कहते ना कि तालाब में सुन दिख रही जलाशय के ऊपर, तो बाकी तो हाथी जल के अंदर है, तो उसका एक अवयव देखकर हम वो जो छिपा है अंदर उसको भी पहचान लेते हैं, इस तरह से लेना उसमें। यानी वो तो ये लिया ना हमने, एक देश के ग्रहण काल में वस्तु का ज्ञान होना, प्रतिनियत गुण विशिष्ट वस्तु के ग्रहण करने के समय ही अनियत गुण विशिष्ट वस्तु के ग्रहण होने को अनुक्त ज्ञान कहते हैं। ये अनुक्त ने अकेले सुनने के बारे में नहीं, हम कहते हैं उक्त ने बताया हुआ, अनुक्त ने बिना बताए हुए भी जिसको जान लेना, परंतु ये तो सुनने में ही आएगा, परंतु ये सभी इंद्रियों और मन पर ये घटित कर ले। सत्वार सूत्र की जो रामजी भाई की टीका है ना, उसमें एक एक विषय पर बहुत विस्तार से चर्चा है, हमने यहाँ भी पढ़ा था, धवला के उसमें भी पढ़ा था। जैसे जिस समय चक्षु से मिश्री को जाना, उसी समय उसके रस का ज्ञान हो जाना अनुक्त ज्ञान है। क्या कहते हैं, आंखों से तो शक्कर देखी और उस समय वो मीठी है ऐसा जाना, उसका रस का ज्ञान हो गया, वो अनुक्त का ज्ञान। इससे विपरीत ज्ञान को उक्त ज्ञान कहते हैं। चिरकाल तक स्थिर रहने वाले पदार्थ के ज्ञान को ध्रुव ज्ञान, क्योंकि विषय की अपेक्षा बताए ना, और इससे विपरीत ज्ञान को अध्रुव ज्ञान कहते हैं। इस प्रकार इन ज्ञानों की अपेक्षा मति ज्ञान के 336 भेद होते हैं, विषय का ज्ञान, इसलिए वो ज्ञान में ही भेद कर दिए। अब श्रुतक ज्ञान का वर्णन स्थगित करके पहले अवधि ज्ञान आदि का वर्णन करते हैं। ये थप्पो कहेंगे ना, वो सुदनानम ताव थप्पम, ये देखो ये स्टार, ये फूल का चिन्ह है ना, तो ये किसकी बात है, यहाँ पर चूर्णी सूत्र है, ये चूर्णी सूत्र है, सुदनानम ताव थप्पम, ये चूर्णी सूत्र है। यानी उन्होंने अभी श्रुतक ज्ञान को बाद में बताएंगे, क्योंकि हमें श्रुतक ज्ञान की बात निकालनी है ना, वो पूर्व की बात, जो हमारे मूल गाथा सूत्र के लिए उसका वर्णन चलेगा, इसलिए पहले अन्य ज्ञानों को बताकर फिर श्रुत ज्ञान पर आएंगे। ये ऊपर का ही पढ़ेंगे हम, 12 नंबर का, अवधिर मर्यादा सीमा इति अर्थ, अवधि सहचरितम ज्ञानम अवधि, उसका अर्थ देखते देखते हम जाएंगे एक एक वाक्य का। अवधि का ही अर्थ क्या होता है? मर्यादा, सीमा। देखो, अवधि, मर्यादा और सीमा, ये शब्द एकार्थवाची है, तीनों का अर्थ एक ही है। अवधि सहचरितम ज्ञानम अवधि, अवधि से सहचरित ज्ञान भी अवधि कहलाता है, यानी मर्यादा सहित ज्ञान है ना ये, उसमें क्या क्या मर्यादा है वो बताएंगे, विदेश द्रव्य क्षेत्र काल भाव की। इस प्रकार अवधि रूप जो ज्ञान है वह अवधि ज्ञान है। ऊपर क्या लिखा है? अवधिश्च सह ज्ञानम च तद अवधि ज्ञानम। हाँ, क्योंकि 11 और 12 तो वीरसेन आचार्य के लिए, तो ये साइन गलत है, वही मैं, हाँ हाँ, मुझे भी पहले क्या ये नंबर क्यों डाला ऐसा लगा था मुझे, बराबर है, ये साइन गलत है, यहाँ फूल नहीं चाहिए, वो एस और एस ऐसी साइन है ना, वो चाहिए। चलो, हमने चिन्ह के द्वारा इसको चूर्णी सूत्र का बताया, परंतु विनोद भाई ने बराबर बताया इसको, ये साइन गलत हुई है यहाँ पर, क्योंकि संख्या उन्होंने इसके लिए जय धवला के लिए लिखी है। नीचे साइन बराबर किए, हाँ। तो हम डायरेक्ट हिंदी पढ़ेंगे, हाँ? अवधि से सहचरित ज्ञान भी अवधि कहलाता है। इस प्रकार अवधि रूप जो ज्ञान है वह अवधि ज्ञान है। यदि कहा जाए कि अवधि ज्ञान का इस प्रकार लक्षण करने पर मर्यादा रूप मति ज्ञान आदि अलक्षों में भी यह लक्षण चला जाता है, इसलिए अतिव्याप्ति दोष प्राप्त होता है, सो भी नहीं है। क्या कहता है? अवधि ज्ञान को मर्यादा वाला ज्ञान कहेंगे, तो मति ज्ञान में भी मर्यादा है, श्रुत ज्ञान में भी मर्यादा है, तो ये जो लक्षण है अवधि वाला लक्षण, वो अन्य ज्ञानों में भी होता है, तो उसको क्या कहेंगे? अति, ऐसा कहना पड़ेगा, ये प्रश्न है ना। सो भी बात नहीं है, क्योंकि रूढ़ी की मुख्यता से किसी एक ही ज्ञान में अवधि शब्द की प्रवृत्ति होती है। कितनी बातें रूढ़ी से होती है, भले वो शब्दशः अर्थ होने पर भी रूढ़ी से जिस ज्ञान को अवधि ज्ञान कहने में आता है उसी को कहेंगे। मर्यादा तो सभी ज्ञानों में, मतिश्रुत अवधि मन पर्य में। विशेषतः यहाँ यह शंका उठती है कि केवल ज्ञान को छोड़कर शेष चारों ज्ञान सावधि यानी मर्यादा सहित है, इसलिए केवल अवधि ज्ञान का लक्षण सावधि करने पर, सावधि यानी स अवधि, अवधि सहित करने पर इस लक्षण के मति ज्ञान आदि शेष तीन ज्ञानों में चले जाने से, यानी यह लक्षण अन्य ज्ञानों पर भी घटित होने से अतिव्याप्ति दोष प्राप्त होता है। पर इस शंका का यह समाधान है कि यद्यपि मति आदि चारों ज्ञान सावधि है, फिर भी रूढ़िवश अवधि शब्द का प्रयोग द्रव्य क्षेत्र काल और भाव का आश्रय लेकर मूर्त पदार्थ को प्रत्यक्ष जानने वाले ज्ञान विशेष में ही किया गया है, अतएव अतिव्याप्ति दोष नहीं आता। रूढ़ी हमने अवधि ज्ञान किसको कहना उसकी परिभाषा बता दी है कि द्रव्य क्षेत्र काल और भाव का आश्रय लेकर, यानी उसकी मर्यादा सहित रूप यानी मूर्त पदार्थ को प्रत्यक्ष जानने वाला जो ज्ञान है उसको अवधि ज्ञान कहते हैं। इसलिए वो अतिव्याप्ति दोष होने की जो शंका थी वो दूर हो गई। शंका, अवधि ज्ञान में अवधि शब्द का प्रयोग किस लिए किया है? उसका समाधान, इससे नीचे के सभी ज्ञान सावधि है और ऊपर का केवल ज्ञान निरवधि है, इस बात का ज्ञान कराने के लिए अवधि ज्ञान में अवधि शब्द का प्रयोग किया है। अब कोई कहेगा फिर मनोपरे ज्ञान को यहाँ नीचे लेना है कि ऊपर लेना है? यदि कहा जाए इस प्रकार के कथन करने पर मनोपरे ज्ञान से व्यभिचार दोष आता है, सो भी बात नहीं है, क्योंकि मनोपरे ज्ञान भी अवधि ज्ञान से अल्प विषय वाला है। देखो मन परिज्ञान अधिक से अधिक कितने द्रव्य को जानता है, अधिक से अधिक कितना काल तक को जानता है, ये तो दो चार भाव सात आठ भाव तक जानेगा अधिक से अधिक। और यहाँ उदिक ज्ञान उसकी कैपेसिटी कितनी है, मैक्सिमम सर्वावधि वाले की, असंख्यात लोक प्रमाण काल को जानेगा। देशावधि की उत्कृष्ट मर्यादा है पल्ले में एक समय कम वाली, उत्कृष्ट देशावधि, उसके आगे परमावधि के असंख्यात भेद है और फिर सर्वावधि सर्वोत्कृष्ट ज्ञान है। तो इसका विषय बहुत बड़ा है, द्रव्य को भी सूक्ष्म तक को जानता है, क्षेत्र भी असंख्यात लोक क्षेत्र तक जानता है, और मनोपरिज्ञान कितना जानता है, हाँ 45 लाख योजन का स्क्वायर करो, स्क्वायर है चौरस, हाँ मनुष्य लोग तो गोलाकार है, इसको चौरस रूप इतना क्षेत्र को जानता है, तो ये लिमिटेड है ना, ज्यादा लिमिट है इसकी, तो इसलिए उस अपेक्षा से उससे भी इसकी मर्यादा छोटी है और अवधि की मर्यादा बड़ी है, परंतु ये इसलिए इन तीनों को नीचे लिया, मति श्रुतर मन परिज्ञान और बाद में अवधि, तो सबको ये अवधि वाली मर्यादा है। तो जैसे हम कहते हैं ना वो क्या कहते हैं अंत दीपक जैसे कहते ना अंत दीपक, वैसे अवधि कहने से उसके नीचे के सभी ज्ञान अवधि वाले हैं। ये बात यहां से देखिए, देख मन परे ज्ञान भी अवधि ज्ञान से अल्प विषय वाला है, इसलिए विषय की अपेक्षा उसे अवधि ज्ञान से नीचे का स्वीकार किया गया है, विषय की अपेक्षा हो तो ऊपर किस अपेक्षा से होगा, हाँ संयम और विशुद्धि की अपेक्षा। फिर भी संयम के साथ रहने के कारण मनपरे ज्ञान में जो विशेषता आती है, उस विशेषता को दिखलाने के लिए मनपरे ज्ञान को अवधि ज्ञान से नीचे न रखकर ऊपर रखा जाता है, रखा है, इसलिए कोई दोष नहीं है, परंतु अवधि यानी मर्यादा ये विशेषण लगाने के लिए उस अपेक्षा से उसका विषय इससे भी मर्यादित है, इसलिए उसको नीचे बताएं। ऐसा जरूरी नहीं, मन परे ज्ञान वाले को अवधि ज्ञान होता ही ऐसी बात नहीं है, वो दोनों ही अलग अलग है ना, कि अवधि ज्ञान आवरण और मन परे ज्ञान आवरण दो भिन्न भिन्न है, परंतु मन परे ज्ञान होता तो मुनियों को होता, होगा तो मुनियों को ही होगा, अवधि ज्ञान तो उसके तो बहुत सारे भेद है, तो चौथे से ही भी लेकर होता है अवधि ज्ञान की, विभंग ज्ञान की बात नहीं कर रही मैं, अब ये अवधि ज्ञान की बात यहाँ बता रहे। वह अवधि ज्ञान तीन प्रकार का है, देशावधि, परमावधि और सर्वावधि। इन तीनों ज्ञानों के लक्षण जिस प्रकार प्रकृति नाम के अनुयोग द्वार में कहे गए हैं, उसी प्रकार उनका यहाँ कथन करना चाहिए। देखो वीरसेन स्वामी ने एक पूरे धवला टीका लिखी है, जिसका हमारा पूरा आद्योपान स्वाध्याय हो गया ना अभी यहाँ, तो वहां जो विस्तार से वर्णन किया गया है उसका यहाँ उल्लेख कर दिया कि वहां विस्तार से आ गई। हमने कल पढ़ा था वो धवला पूर्ण होने पर 21 साल के बाद इसकी रचना पूर्ण हुई थी, दोनों में 21 साल का डिफरेंस है, धवला के बाद 21 साल के बाद इसकी रचना पूर्ण हुई थी जय धवला की, वहां लिखा ना ये उससे 21 साल और 4 मास से छोटी है करके, आपको याद नहीं है, नहीं 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 3 साल नहीं 21 साल, 21 साल और 4 महीना या ऐसा कुछ था, निकालो निकालो, हाँ आपको शंका है तो, हाँ उसका काल की बात आई थी उसमें, ग्रंथ परिचय में जय धवला और धवला ऐसा होना चाहिए, वो जो हेडिंग देते हैं ना उसमें होना चाहिए। मिला क्या अरविंद 60? हाँ 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 देवला से जदवला उसमें 21,004 मास, 4 महीना के ना अभी लगभग छोटी, लगभग छोटी है ये। कौन कहाँ समाप्त हुआ उसकी समाप्ति की अपेक्षा बात है वो। नहीं 4 महीने बता दिए ना। हाँ इसीलिए पहले धवला का, क्योंकि जो विषय वहाँ विस्तार से बताया है, फिर यहाँ तो बस बता दिया कि वहाँ ये देख लेना या उस अनुयोग द्वार में इसकी चर्चा हो गई है। विशेषार्थ द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की मर्यादा लेकर जो ज्ञान रूपी पदार्थों को प्रत्यक्ष जानता है। देखो एक एक शब्द इसका महत्व का है। पहले मर्यादा किसकी है? द्रव्य की, क्षेत्र की, काल की और भाव की। द्रव्य की क्या मर्यादा है? अब कौन से द्रव्य को जानता है? तो रूप यानी पुद्गल को ही जानता है। तो द्रव्य की मर्यादा में कितने सूक्ष्म तक को जानता है उसको लेना। जैसे बहुत बार मैं उदाहरण देती हूँ, या आंखें जांच करने को जाते तो हमको एक चार्ट बताया जाता है, तो कौन सी लाइन तक पढ़ सकते हैं उसको देखते हैं ना, तो वो मर्यादा हुई। ऐसे स्कंद को जानते हैं, सर्वावधि वाला परमाणु तक जानेगा। हम देशावधि से शुरू करते हैं, तो देशावधि वाला, कोई देशावधि वाला छोटे स्कंद को जानेगा, छोटे स्कंद तक को। जो तक को क्यों कहा? क्योंकि जो छोटे को जानता है वो तो बड़े को जानता ही है, उसमें कोई मर्यादा नहीं है। यानी बड़े स्कंदों को जानना तो ठीक है, परंतु सूक्ष्म से सूक्ष्म कहाँ तक को जानता है उसकी लिमिट बताई है। उससे पावरफुल अवधि ज्ञान है, तो उससे भी सूक्ष्म स्कंदों को जानेगा। उससे भी पावरफुल है वो, और उससे सूक्ष्म स्कंद को जानेगा। इसलिए द्रव्य की मर्यादा, क्षेत्र की मर्यादा तो जानना से लगे। जो अधिक क्षेत्र तक को जानेगा वो पावरफुल जाता है। अधिक काल यानी पूर्व का और भविष्य का, उसको काल की मर्यादा कहेंगे। और भाव में विशिष्ट इतने पर्यायों को भी जानता है। सभी पर्यायों को तो केवल ज्ञान जानता है, परंतु अवधि ज्ञान भी अमुक एक पर्यायों को जानता है। तो उस अपेक्षा से उसमें भी लिमिट है, उसमें भी मर्यादा है। इसलिए द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की मर्यादा लेकर जो ज्ञान रूपी पदार्थों को, अब ये जैसे इंद्रियों के द्वारा देख देख कर या ऐसे जो कुछ, ऐसा ज्ञान नहीं है उनका, तो प्रत्यक्ष ज्ञान है। वहां इंद्रियों मन वगैरह का निमित्त के बिना वाला वो प्रत्यक्ष ज्ञान, उसे अवधि ज्ञान कहते हैं। इस अवधि ज्ञान के भव प्रत्यय और गुण प्रत्यय इस प्रकार दो भेद हैं। ये भव प्रत्यय अवधि ज्ञान किसके होते हैं? देव और नारकियों को होता ही है, हाँ, और तीर्थंकर को गृहस्थ अवस्था में होता है, उसको भव प्रत्यय कहा है। और गुण प्रत्यय जो है सम्यक्त्व और संयम आदि के कारण जो होता है उसको गुण प्रत्यय कहा। यद्यपि सभी अवधि ज्ञानावरण कर्म के क्षोपशम के होने पर ही प्रकट होते हैं, फिर भी जो क्षोपशम भव के निमित्त से होता है। देखो ये अच्छी परिभाषा है, यानी सभी में निमित्त क्या है? अवधि ज्ञानावरण का क्षोपशम। यह अवधि ज्ञानावरण प्रकृति देशघाती है कि सर्वघाती है? देशघाती, तभी तो क्षोपशम घटित होगा। क्योंकि सर्वघाती जो केवल ज्ञानावरण होता है उसको या तो उदय होता है या तो क्षय होकर क्षायिक भाव जीव को केवल ज्ञान होता है। ये जो चार जो है ना, मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण और मन परे ज्ञानावरण, वो देशघाती प्रकृतियां है। मति श्रुत ज्ञानावरण दोनों का हमेशा ही क्षयोपशम ही पाया जाता है अनादि से ही। अवधि ज्ञानावरण और मन परे ज्ञानावरण का क्षयोपशम अनादि से नहीं है, किसी विशिष्ट जीव को होता है। क्योंकि मति श्रुत ज्ञान हरेक जीव को अनादि से है, अवधि ज्ञान और मन परे ज्ञान तो है ही नहीं, उसके बाद में प्रकट होता है ना। तो देशघाती प्रकृति होने पर भी अवधि ज्ञान और मन परे ज्ञान क्यों नहीं हमको? हाँ, तो उसके स्पर्धक सर्वघाती रूप से उदय में आते हैं, तो हम कहेंगे यह औदयिक अज्ञान चल रहा है। अब किसी जीव के उसका क्षोभशम पाया जाएगा, सर्वघाती का उदय नहीं होगा, देशघाती स्पर्धकों का उदय पाया जाएगा, तुम कहेंगे इस कर्म का वहां क्षोभशम चल रहा है, तब उस जीव को वहां अवधि ज्ञान प्रकट है या मन परे ज्ञान प्रकट है। इसलिए कहा इसका अभी यहां अवधि ज्ञान की बात चल रही है, तो जिसको अवधि ज्ञान है उसके तो अवधि ज्ञान आवरण कर्म का क्षोभशम पाया जाता ही है, परंतु फिर भी जो क्षोभशम भव के निमित्त से होता है, यानी देव और नारकी उसके भव में तो ये अवधि ज्ञान आवरण का क्षोभशम तो नियम से होता ही है, तो उससे होने वाले अवधि ज्ञान को भव प्रत्यय कहते हैं। और जो क्षोभशम सम्यक दर्शन आदि गुणों के निमित्त से होते हैं उससे होने वाले अवधि ज्ञान को गुण प्रत्यय कहते हैं। यद्यपि गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान सम्यक दर्शन देशव्रत और महाव्रत के निमित्त से होता है, तो भी वह सभी सम्यक दृष्टि देशव्रती और महाव्रती जीवों के नहीं पाया जाता। क्या कहना चाहते, जिसको ये गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान है वो तो सम्यक्त्व के कारण या देशव्रतों के, देशव्रत यानी पांचों गुण स्थान है, यानी वहां वो दो कषाय के अभाव पूर्वक वो वाला समझना, हाँ अकेले व्रत यानी बाह्य व्रत की बात नहीं है और संयमियों के होता है, तो भी वो सभी को नहीं पाया जाएगा। अभी सभी समय दृष्टि देशव्रती और महाव्रती जीवों के नहीं पाया जाता, क्योंकि असंख्यात लोक प्रमाण सम्यक्त्व संयमासंयम और संयम रूप परिणामों में, परिणामों की बात है, सम्यक्त्व के परिणाम अलग अलग कितने हो सकते हैं, असंख्यात, संयमासंयम के भी असंख्यात लोक प्रमाण और संयम रूप परिणाम भी असंख्यात लोक प्रमाण है, यानी जिनके सम्यक्त्व है उनके परिणामों में भी इतने वेरिएशन है। हमने तो देखा था तिर्यंच के योग्य जो है मनुष्यों के योग्य उसमें भी वेरिएशन होगी। अब संयमासंयम यानी जिस विशुद्धि के द्वारा तिर्यंच को सम्यक्त हो सकता है वो मनुष्यों को ज्यादा विशुद्धि से होगा, या जो कुछ है उसमें अल्प बहुत। तो यहाँ कहते हैं कि ऐसे जो सम्यक्त्व के देशव्रत के और महाव्रत के परिणाम जो अवधि ज्ञानावरण के क्षोभशम में निमित्त हो वो थोड़े हैं, तो सभी के द्वारा अवधि ज्ञान नहीं होगा। जिसके होता है वो सम्यक्त्व देशव्रती या महाव्रती होता है, परंतु सभी जीवों को अवधि ज्ञान नहीं पाया जाता, कि इतने सारे असंख्यात लोक प्रमाण सम्यक्त्व संयमासंयम और संयम रूप परिणामों में अवधि ज्ञानावरण के क्षोभशम के कारणभूत परिणाम बहुत ही थोड़े हैं। अवधि ज्ञान को कारणभूत सम्यक्त्व या देशव्रत या हाँ, यह अवधि ज्ञान यानी वो सु अवधि ज्ञान की बात चल रही है, यहाँ पर विभंग ज्ञान की यहाँ बात नहीं उठाई। हाँ विभंग ज्ञान की बात, हाँ वो मेजॉरिटी तो भव प्रत्यय वाले ही है, परंतु मनुष्य तिर्यंचों में भी होते हैं ना, हाँ जो ज्यादा चर्चा उसकी नहीं आती है। देखो हमने देखा था ना, कोई जीव है बारहवें गुणस्थान का अंतिम समय वर्ती है, क्षपक वाला है, और वहां उसको अवधि ज्ञान उत्पन्न हुआ, तो क्या पहले उसको विशुद्धि नहीं थी, ऐसी थोड़ी बात है। तो अवधि ज्ञानावरण के क्षोभशम के कारणभूत कोई परिणाम अलग हो गए, अब वो जो कोई यथा योग्य हो गए। भव प्रत्यय अवधि ज्ञान ये किसको होता है वो बताइए। हाँ, उनमें से कुछ परिणामों में जो इसमें है अवधि ज्ञानावरण के क्षोभशम में कारणभूत है, ऐसे परिणाम सबको तो नहीं होता है, किसी को होता है। हाँ तीनों ही नहीं, हाँ अभी किसी को सम्यक्त्व के साथ अवधि ज्ञान है और किसी को संयम लेकर भी अवधि ज्ञान नहीं है, ऐसे भी जीव है ना। हाँ विशिष्ट जीवों को ही होगा, अभी देखो देशावधि है वो तो तीनों की भी हो सकते हैं, चौथे गुणस्थान से लेकर ऊपर कहीं भी देशावधि तो पाया जाएगा, परंतु परमावधि और सर्वावधि तो मुनियों के ही पाया जाएगा, और सर्वावधि तो बस तद्भव मोक्षगामी उनके ही होगा। भव प्रत्यय अवधि ज्ञान देव और नारकियों के तथा गुण प्रत्यय तिर्यंच और मनुष्यों के होता है। विषय आदि की प्रधानता से अवधि ज्ञान के देशावधि परमावधि और सर्वावधि ये तीन भेद किए जाते हैं। विषय आदि की प्रधानता से ने कितने द्रव्य को जानते हैं, कितने क्षेत्र को, काल को, भाव को, उसमें से कैसे कैसे वो द्रव्य की सूक्ष्मता की ओर बढ़ जाएंगे, तो आगे आगे वाला भेद होगा। इसके सभी के असंख्यात असंख्यात भेद है, सर्वावधि तो एक होता है। भव प्रत्यय अवधि ज्ञान देशावधि रूप होता है। देखो ये एक बात है, भव प्रत्यय तो देशावधि ही हो गए, क्योंकि भव प्रत्यय में जो देव और नारकी चौथे गुण स्थान तक ही जाते हैं ना। और गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान तीनों प्रकार का होता है। कौन से तीन प्रकार? देशावधि भी हो गए, परमावधि भी और सर्वावधि भी हो गए। तो परमावधि और सर्वावधि तो गुण प्रत्यय ने मनुष्यों में ही होगा, संयमियों को। देशावधि का उत्कृष्ट विषय, अब देशावधि में मैक्सिमम पॉसिबल कौन से सूक्ष्म पदार्थ तक जानता है ये भी बात आएगी, और कितने क्षेत्र तक, कितने काल तक, तो उसका विषय क्षेत्र की अपेक्षा संपूर्ण लोक। देशावधि का उत्कृष्ट बता रहे हो, काल की अपेक्षा एक समय कम पल्ल्यपम। हाँ बरोबर है, अभी मैंने बता दिया था एक समय कम पल्ल्य देशावधि का उत्कृष्ट है। और द्रव्य की अपेक्षा ध्रुवहार से एक बार भक्त कार्मण वर्गणा प्रमाण, ये क्या कहना चाहते हैं? कार्मण वर्गणा का जो प्रमाण है उसको ध्रुवहार, ध्रुवहार उसको कहते हैं, एक फिक्स भागाकार है, एक ऐसी संख्या है कि जिसको भाग देंगे हम, देशावधि सबसे जघन्य वाला जो है वो कितने द्रव्य को, कितने परमाणुओं के स्कंध को जानता है, उसको उस ध्रुवहार से भाग देंगे तो जो संख्या आएगी उतने परमाणुओं के स्कंध को दो नंबर का देशावधि ज्ञान जानता है। दो नंबर का देशावधि जितने परमाणुओं के स्कंध को जानता है उसको उसी ध्रुवहार से, हार यानी भागहार, भागहार को भाजक जिसको हम कहते हैं, उसी संख्या से भाग देंगे तो जो संख्या आएगी उतने परमाणुओं के स्कंध को तीसरा वाला अवधि ज्ञान जानता है। ये हर बार उसी ध्रुवहार से भाग देते चले जाएंगे, ऐसे असंख्यात बार भाग देंगे। तो यहाँ क्या भक्त ने भाजित, एक बार भक्त ने एक बार भाजित भाग भाग दिया हुआ। तो द्रव्य की अपेक्षा कितना है? एक बार ध्रुवहार से भाजित कार्मण वर्गणा प्रमाण, और भाव की अपेक्षा द्रव्य की असंख्यात लोक प्रमाण पर्याय हैं। उत्कृष्ट देशावधि की बात है। उत्कृष्ट देशावधि के बाद आगे का नंबर किसका होगा? परमावधि का होगा। हाँ, लोक प्रमाण पर्याय पुद्गल की पर्याय, और वो भी आगे आगे वाले भेदों में ये तो बढ़ते जाएंगे, और द्रव्य का प्रमाण परमाणुओं का सूक्ष्म की ओर बढ़ेगा, क्षेत्र और काल अधिक अधिक की ओर बढ़ेगा, और द्रव्य सूक्ष्मता की ओर जाएगा, यानी और छोटे में छोटे स्कंदों को जानेगा, वो द्रव्य की अपेक्षा से आगे आगे के भेदों में घटित होगा। इसके अनंतर परमावधि ज्ञान प्रारंभ होता है। उत्कृष्ट देशावधि के ऊपर और सर्वावधि के नीचे जितने अवधि ज्ञान के विकल्प हैं वे सब परमावधि के भेद हैं। परमावधि के भी बहुत सारे हैं, मनोवर्गणा के जितने ऐसा कुछ है उसमें, उसका भी एग्जैक्ट वर्णन है इसमें, जब मैं ज्ञान चंद्रिका में पढ़ा था हमने। अवधि ज्ञान का सबसे उत्कृष्ट भेद सर्वावधि कहलाता है। ये सर्वावधि में कोई जघन्य उत्कृष्ट मध्यम नहीं होते। देशावधि में हम कहते हैं ये मिनिमम देशावधि है, मैक्सिमम है, परमावधि भी उसमें भी जघन्य और उत्कृष्ट भेद है, परंतु सर्वावधि एक अकेला है। हाँ। उत्कृष्ट देशावधि, परमावधि और सर्वावधि संयत ही, संयत के ही होते हैं। ये उत्कृष्ट देशावधि वाला भी अन्य में नहीं पाया जाता। ये फिर बताती हूँ। देखो, द्रव्य की अपेक्षा से यानी क्या, कितने परमाणुओं के समूह को, स्कंद को जानता है, ये उसकी मर्यादा है। तो हमने देखा था जो जघन्य ज्ञान है, जिसकी पावर कम है, वो बड़े बड़े स्कंदों को जानेगा, और जिसकी पावर ज़्यादा है वो और छोटे छोटे स्कंदों को जानेगा। तो हम देशावधि को नंबरिंग देंगे, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, आगे आगे के नंबर पावरफुल है, तो और छोटे छोटे स्कंदों को जानेंगे। तो कैसे कैसे, जो पहले नंबर पर द्रव्य की अपेक्षा पहला नंबर है, और द्रव्य की अपेक्षा जानने की अपेक्षा से दूसरा नंबर है, उसमें कैसा घटित करेंगे? तो पहले जितने स्कंद को जानता है उन परमाणुओं की संख्या को इस ध्रुवहार से भाग देंगे, तो जो भाग देने पर छोटी संख्या हो जाएगी, तो जितनी आएगी उतने परमाणुओं के स्कंद को दो नंबर का देशावधि जानता है, फिर उसको उसी भागहार से भाग देंगे, तो आगे आगे वाले भेद है वो सूक्ष्मता की ओर बढ़ेंगे। वो सूक्ष्म सूक्ष्म को जानता है। जगन्य भी कितना जानता है मालूम है? सूक्ष्म निगोद की जो अवगाहना है ना, उतने स्कंद तक तो जघन्य में जघन्य देशावधि जानता है, और आगे वाले भेद और उसके सूक्ष्म तक के चले जाएंगे। और सर्वावधि ज्ञान वाला एक परमाणु को जानता है। आपका प्रश्न है, सर्वावधि रूपी को जानता है और केवल ज्ञान रूपी को जानता है, वो सिंगल परमाणु को जानते हैं, क्या फर्क होगा कि नहीं होगा? वो दोनों ही एक परमाणु को जान रहे हैं, प्रत्यक्ष जान रहे हैं। डिफरेंस कहाँ है? द्रव्य की अपेक्षा भेद नहीं हुआ। कितने क्षेत्र तक को जानते हैं? तो सर्वावधि असंख्यात लोक प्रमाण क्षेत्र तक को जानेगा, और केवल ज्ञानी अनंत तक। अरे दोनों में तो रूपी पदार्थ है तो लोकाकाश में है, फिर भी पावर कितनी है? इसको असंख्यात लोक में अगर रूपी पदार्थ होते तो जानता, इतनी उसकी शक्ति है। और केवल ज्ञान में लोकालोक पूरा ही ले लेना। फिर काल की अपेक्षा, इसका काल कितना? असंख्यात लोक, वो काल में भी असंख्यात लोक प्रमाण लगाया है, वहां तक ही जानने की इतना काल की अपेक्षा पावर है। और केवल ज्ञानी की शक्ति अनादि से अनंत काल तक। और भाव की अपेक्षा ये मुख्य बात आई, असंख्यात ही कुछ पर्यायों को जानेगा और वो अनादि अनंत सभी पर्यायों को जानेगा, ये डिफरेंस है। अवधि ज्ञानी ऐसे अविभाग प्रतिच्छेद नहीं जाने, विशिष्ट भावों को जानेंगे। हाँ, वो भावों की भी जो बात है ना, तो विशिष्ट तक ही जानेंगे, उसमें मर्यादा है। यानी द्रव्य क्षेत्र काल भाव, द्रव्य में ही उन्होंने एक परमाणु को जाना, उन्होंने भी जाना, इन्होंने भी प्रत्यक्ष जाना, उन्होंने भी प्रत्यक्ष जाना, फिर भी उसमें क्षेत्र काल भाव, भाव में जानने की बात आती है ना, तो पूरा भाव नहीं जानेंगे ये। और अनंत गुण है, और अनंत गुणों में से कुछ गुणों के भाव जानेंगे, ये सबके भाव थोड़ी जानेंगे। वर्तमान की भी सभी पर्यायों को नहीं जानेंगे, कुछ पर्यायों को जानेंगे। प्रत्यक्ष जानते हैं, और उसके अनादि अनंत काल की पर्यायों को भी प्रत्यक्ष जान रहे। उत्कृष्ट देशावधि परमावधि और सर्वावधि संयत के ही होते हैं, तथा जघन्य देशावधि मनुष्य और तिर्यंच दोनों के होता है। जघन्य में जघन्य देशावधि मनुष्य और तिर्यंचों के होता है। देशावधि के मध्यम विकल्प यथासंभव चारों गतियों के जीवों के पाए जाते हैं। मध्यम की बात चल रही है अभी। वो अवधि ज्ञान अनेक प्रकार से बताया है, तो वर्धमान, हीयमान, अवस्थित, अनवस्थित, अनुगामी, अननुगामी, प्रतिपाती, अप्रतिपाती, एक क्षेत्र और अनेक क्षेत्र के भेद से भी अवधि ज्ञान अनेक प्रकार का है। वर्धमान यानी बढ़ता जाने वाला, हीयमान यानी घटते घटते, अवस्थित यानी उतना ही रहने वाला, अनवस्थित यानी कम ज्यादा होने वाला, अनुगामी का अर्थ है टू फॉलो। जैसे अभी हाँ किसी के अभी यहाँ पर अवधि ज्ञान है और यहाँ से बॉम्बे से दिल्ली चला गया, तो उस क्षेत्र में उसका वो अनुगम नहीं करेगा, वो हाँ वो अनुगामी होगा। और वो वहां पर भी चलता है तो वो अनुगामी है, अनुगामी भी क्षेत्रानुगामी भवानुगामी ऐसी बात आती है। आगे लिखा है क्या? मैंने आगे नहीं पढ़ा। अच्छा ठीक है, हाँ पढ़ेंगे फिर। अनुगामी यानी उसके साथ रहना, अननुगामी यानी वो उसके साथ नहीं जाना। क्षेत्र की भी बात कहेंगे या बहु की भी करेंगे। प्रतिपाती यानी वो तो गिरना, यानी संयम भी या सम्यक तो भी छूट जाता है, उसको प्रतिपाती कहेंगे। अप्रतिपाती यानी नहीं गिरना। एक क्षेत्र और अनेक क्षेत्र के भेद से अनेक प्रकार का है, अभी वो समझा रहे आगे। जो अवधि ज्ञान उत्पन्न होने के समय से लेकर केवल ज्ञान उत्पन्न होने तक बढ़ता चला जाता है, वह वर्धमान अवधि ज्ञान है। यानी खाली एक भाव की बात नहीं, केवल ज्ञान होने तक वो बढ़ता ही जाता है। जो अवधि ज्ञान उत्पन्न होकर वृद्धि और अवस्थान के बिना घटता चला जाता है, यानी ना उसमें वृद्धि होती है और ना ही वैसा का वैसा रहता है, वो घटता ही चला जाता है, वह हीयमान अवधि ज्ञान है। जो अवधि ज्ञान उत्पन्न होकर केवल ज्ञान प्राप्त होने तक अवस्थित रहता है, एक अवस्थित की मर्यादा बताई, वह अवस्थित, अवस्थित है ना उतना का उतना रहना, वह अवस्थित के अवधि ज्ञान है। जो अवधि ज्ञान उत्पन्न होकर कभी बढ़ता है कभी घटता है कभी अवस्थित रहता है, वह अनवस्थित अवधि ज्ञान है। जो अवधि ज्ञान उत्पन्न होकर जीव के साथ जाता है वह अनुगामी अवधि ज्ञान है। इसके क्षेत्रानुगामी भवानुगामी और क्षेत्र भवानुगामी, यानी जो अकेले क्षेत्र में अनुगम करता है, जो भव में करता है अकेले भव में, और जो दोनों में करता है, ऐसे तीन भेद हैं। इसी प्रकार अननुगामी अवधि ज्ञान के भी क्षेत्र अननुगामी भव अननुगामी और क्षेत्र भव अननुगामी, ये तीन भेद हैं। जो अवधि ज्ञान उत्पन्न होकर समूल नष्ट हो जाता है वह प्रतिपाती अवधि ज्ञान है। जो अवधि ज्ञान उत्पन्न होकर केवल ज्ञान के होने पर ही नष्ट होता है वह अप्रतिपाती अवधि ज्ञान है। प्रतिपाती और अप्रतिपाती ये दोनों अवधि ज्ञान सामान्य रूप से कहे गए हैं, इसलिए इनका वर्धमान आदि में अंतर्भाव नहीं होता है। यानी बस वो है कि नहीं इतनी अपेक्षा से उसको बताएं। जो अवधि ज्ञान शरीर के किसी एक देश से उत्पन्न होता है उसे एक क्षेत्र अवधि ज्ञान कहते हैं। हाँ यह नई बात है। जो अवधि ज्ञान शरीर के प्रतिनियत क्षेत्र के बिना उसके सभी अवयवों से उत्पन्न होता है वह अनेक क्षेत्र अवधि ज्ञान कहलाता है। यह देवनारकियों में होता है, मनुष्यों में उसके नाभि के ऊपर जो कुछ चिन्ह होते हैं वहां से उत्पन्न होता है, और विभंग ज्ञान है वो नाभि के नीचे के उच्च चिन्ह। हाँ देव और नारकियों के अनेक क्षेत्र अवधि ज्ञान ही होता है, यानी उनका जो क्षोभ ऑल ओवर पाया जाता है, क्योंकि देव और नारकी अपने शरीर के समस्त प्रदेशों से अवधि ज्ञान के विषयभूत पदार्थों को जानते हैं। इसी प्रकार तीर्थंकरों के भी अनेक क्षेत्र अवधि ज्ञान होता है, यानी तीर्थंकर का जीव, तीर्थंकर होने पर तो केवल ज्ञान है, हाँ उसके पहले की बात। फिर भी शेष सभी जीव शरीर के एक देश से ही अवधि ज्ञान के विषयभूत पदार्थों को जानते हैं, ऐसा एकांत नियम नहीं है, क्योंकि परमावधि और सर्वावधि के धारक गणधर देव आदि मनुष्यों के भी अनेक क्षेत्र अवधि ज्ञान पाया जाता है। ये अभी रुकना पड़ेगा, ये विषय नहीं चलेगा। 10 बज गए। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सो वाणी मस्तक अश्विन भाई।